श्रील प्रभुपाद की जय। श्री यशोदा माई की जय। श्री मेहरानो गाम की जय। श्री नंद ग्राम की जय। श्री बरसानंद गाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। जय श्री राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आप सबका एक विशेष स्थान पर स्वागत है। जैसे हम लोग अभी आ रहे थे यहाँ पर, तो लोग पूछ रहे थे कहाँ जा रहे हैं आप, तो हमने कहा कि आपके गांव में आ रहे हैं। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पर कोई ज्यादा आता नहीं है, बहुत दुर्लभ जगह है ये यशोदा देवी का जन्म स्थान है। इसका नाम है मेहराना, लोकल भाषा में कहते हैं मेहरानो। तो यशोदा देवी का और नंद महाराज का जो जन्म तिथि है वो बहुत समय तक किसी को पता नहीं था। तो एक नंदगांव के कन्हैया बाबा हैं, उन्होंने बहुत रिसर्च किया और नंद बाबा का और यशोदा माई का जन्म तिथि ढूंढ के निकाला। अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता सकता हूँ। चलो अभी नहीं मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा निश्चित रूप से, दोनों मेरे पास में हैं। वो नंद बाबा का जन्मदिन दिसंबर के आसपास में आता है, यशोदा देवी का जन्मदिन फरवरी के आसपास में आता है। तो एक यशोदा देवी के जन्म तिथि पर हम आई कैंप हमारा चल रहा था बरसाने में। आप सब जानते हैं ना कि हमारा भक्ति वेदांत अस्पताल का यहाँ पर भी एक अस्पताल है, जहाँ पर राधा माधव आश्रम है उसी के बगल में, उसी के प्रांगण में हमारा अस्पताल है, जहाँ पर हम लोग 1992 से आई कैंप करते आ रहे हैं। बहुत साल तक साल भर का कैंप चलता रहा। 2007 में हमने साल वाले कैंप में महीने वाला कैंप में जोड़ दिया, मंथली कैंप। तो उस समय 10 महीने के कैंप होते थे, 10 मंथली कैंप होते थे मासिक, और वार्षिक कैंप चलते रहता था। उसके बाद भी जरूरत पूरी नहीं हुई तो 2011 में हम लोगों ने, कुछ लोगों ने मुंबई से अपना काम छोड़कर यहाँ पर शिफ्ट हो गए। वो डॉक्टर्स, टॉप डॉक्टर थे हमारे, वो अभी भी काम करते हैं। तो शिफ्ट हो गए तो 2011 में फुल हॉस्पिटल शुरू हो गया हमारा। राधा माधव आश्रम में हम रहते ना, उन्हीं आश्रम के ट्रस्टियों ने अपने ही खर्चे से बड़े प्रेम से हमारे डिजाइन के अनुसार उसको बांध के दिया, फ्री नहीं, बोले करो हमारे यहाँ सेवा करो। 2011 से फिर लोग वहां बस गए, कुछ लोग डॉक्टर्स आए, कुछ टेक्नीशियंस भी आए, और 2011 से मंथली कैंप बंद हो गए और डे टू डे सेवा शुरू हो गई। और वार्षिक कैंप वैसे ही चल रहा है अभी भी, फरवरी में रहता है वो। और कुल मिलके हम लोग वहां पर 4000 ऑपरेशन एक साल में करते हैं। कैंप में कुछ 1100 करते हैं और बाकी हर दिन हर हफ्ते 20-20 करके उसको 3-4 हजार तक कर देते हैं। तो फरवरी में हमारा कैंप लगता है। तो उस कैंप में यशोदा देवी का जन्मदिन आया तो नंदगांव के हमारे जो प्रेमी गोस्वामी हैं, उन्होंने हमको बड़े प्रेम से बुलाया, आपको आना ही है, यशोदा देवी का जन्मदिन है, ऐसा योग नहीं आता है। तो हम कैंप के बीच में से वहां चले गए। तो इतना आनंद रहा वो दिन, इतना आनंद रहा, ऐसी कृपा हो गई कि मैं दर्शन कर रहा था बड़े प्रेम से, यशोदा देवी को प्रार्थना कर रहा था। और हम लोग निकले, निकलने वाले थे तो उन्होंने पर्दा बंद कर दिया, वही पर्दा खोल दिया और मेरे गले में वही माला डाली जो यशोदा देवी के गले में थी। मैंने बड़ा, ये तो बड़ी परम कृपा है उनकी। तो फिर सब ब्रजवासियों का नियम है, उस दिन नंदगांव के ब्रजवासियों का, वो सब वहां पर वो जन्मदिन भोग वोग लगाते हैं, आरती पूजा करते हैं, सब नंदगांव के ब्रजवासी मेहराना गांव आते हैं। और यहाँ पर उनका गीत गायन होता है, नृत्य होता है, पूजन होता है, भोग लगता है। तो उन्होंने हमको मोटरसाइकिल बिठा के हमको भी ले आए। तो उस समय हमारा भाग्य रहा कि पहली बार यशोदा देवी के जन्मदिन के दिवस ही हम लोग यहाँ पर आए। तो ये बड़ा कैसा है कि अभी भी हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे यहाँ पर आने के पहले कि अभी जो वृंदावन धाम है, जो मेन मथुरा वृंदावन, जहाँ पर बहुत सारी कचहरी, बिल्डिंग, आश्रम, ये वो सब, इतना हमारे गुरुजी जब 1971 में आए थे तो वृंदावन ऐसा था परम शांत। आज वहाँ क्या स्थिति है मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि हमने वहां पर रहने की आपकी व्यवस्था क्यों नहीं की, आप किस चीज से बच रहे आपको पता नहीं है। इतना शोर है वहां पर, इतनी भीड़ है, इतना टेम्पो, ट्रैक्टर का आवाज है, बाप रे, कि यात्रा का जो भाव है ना परम शांति वाला वो नहीं बनता है। हो सकता है थोड़ी सांस असुविधा थोड़ी यहाँ पर होगी, इतने बड़े होटल यहाँ पर नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो धाम का जो वास्तविक अनुभव आपको मिल रहा है वो नहीं आपको मिलेगा अभी वहां पर। अगर आप 1971 में आते या हमारे साथ में 85 में आते तो अलग बात है, तभी भी शांति थी, मट्टी के रोड थे, वहां पर परिक्रमा देते थे हम लोग। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ऐसे जगह पर दूर दूर तक अभी देखो ढूंढने में भी परेशानी हुई है ना, वो इधर वापस भागे, यहाँ से दिखाया, यहाँ से उतरना है, टैंकी के पास में टर्न करना है, वहां से आगे चल के आना है, क्यों इतना प्रयास करते हैं, क्यों नहीं आपको मेन मेन सुविधा वाली जगह जो रोड लेवल पे है, अच्छा रास्ता बना हुआ है, वो वही क्यों नहीं दिखाते हैं, ऐसे गांव में इधर रज में बिठाने के लिए क्यों लेके आते, क्योंकि यही सही ब्रज है। जो ब्रज ब्रज हम कहते हैं ना, मुझे प्रभु जी पूछ रहे थे ब्रज का मतलब क्या होता है, ब्रज वो जगह है जहां पर गायें निर्भय विहार करती है, उसका नाम है ब्रज। और एक समय था पूरा भारतवर्ष ही ब्रज था, पूरे भारतवर्ष में सब जगह गायें निर्भय होकर विहार करती थी, कोई काटता नहीं था उनको, कि अंग्रेजों ने सब हमारा जीवन भ्रष्ट कर दिया, हमारे जीवन से गाय को नष्ट कर दिया। और अभी गाय कुछ कुछ जगह पर निर्भय होकर घूमती है और अधिकतर जगह पर भय से मारे घूमती है, जीवन के भय से। तो इस ऐसे जगह पर आने से आपको ना अपनी आंखों से, अपने कानों से, अपनी त्वचा से, अपनी नाक से, हर इंद्रिय से आपको ब्रज का अनुभव मिलेगा, उसको आप ग्रहण करो। जैसे ये पेड़ है, ये जितने भी पेड़ ब्रज में हैं, वो सब पेड़ जो है वो एक तो राजा रानी स्वयं है, दूसरा वो कल्प वृक्ष है जो वैकुंठ से यहां पर आते हैं। कल्प वृक्ष का मतलब क्या होता है, उसके सामने खड़े होकर आप कोई भी इच्छा करेंगे तो वो पूरी कर देते हैं, इनको आप साधारण मत समझना। और तीसरा वृक्ष कौन होते हैं, वृक्ष जो है साधु संत जो परम सिद्ध हो चुके हैं, वो भगवान से कामना करते हैं कि हमको ब्रज में वृक्ष के रूप में जन्म दो, क्योंकि वृक्ष के अंदर एक बहुत अद्भुत शक्ति होती है। वृक्ष जो होता है उसके आसपास जो लीला होती है भगवान की, उसके सार को वो ग्रहण कर लेते हैं जो हम नहीं कर सकते, वो वृक्ष में शक्ति होती है। और ये वृक्ष जो है उनको दिव्य दृष्टि भी होती है, हमको यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है क्या लीला चल रही है, हम तो ऐसे ही कथा बोलते हैं बस खत्म, लेकिन यहाँ पर भगवान की नित्य लीला चलती है दिन रात, जो सिद्ध महात्मा है उनको दर्शन होता है, उसका निरंतर दर्शन होता है। तो वो दर्शन इनको भी होता है जो सूक्ष्म रूप में चल रहा है, हमारे आंखों के पर्दे के परे की लीला जो है ये सब वृक्ष लोग उसको देखते रहते हैं। और हमारे गुरु जी का हमको आदेश है कि जब भी कथा करोगे यात्रा में कहीं, पेड़ के सहारे कथा करो, क्योंकि ये पेड़ का एक गुणधर्म है, जो ये ग्रहण करते हैं आध्यात्मिक सार को उनके सहारे जो आते हैं उनको दे देते हो, तो दिन रात ग्रहण करते हैं, उनके चरणों में जो भी आते हैं उनको वो करंट लगा देते हैं, वायर चार्ज कर देते हैं उनको, ऐसी उनकी महिमा है। यही कथा हम बिल्डिंग के बीच में बैठे करेंगे ना तो आपको एक अनुभव आएगा, और यही कथा पेड़ के सहारे बैठ के करेंगे और आप सुनेंगे तो आपको दूसरा अनुभव आएगा। मुझे अभी भी याद है मैं नासिक यात्रा में जा रहा था पहली बार सबसे 2008 में, तो मैंने महाराज जी ने मुझे पूछा अच्छा अच्छा बताओ बताओ कहाँ कहाँ जाने वाले आप, तो मैंने उनको बताया, मैंने तो बहुत बढ़िया मैनेजमेंट का प्लान किया था कि सारी कथाएं आश्रम में बैठ के करेंगे, मतलब रहने वाली जगह में फिर लेके जाएंगे। महाराज ने कहा ये सब प्लान फेल कर दो, जहां जहां बैठना है कोई भी कथा तुम्हारे रेसिडेंस में नहीं करना है, होटल में नहीं करना है, कोई था एक होटल उसमें किया था हमने, मतलब एक भी कथा होटल में नहीं करनी है, जो भी कथा करनी है पेड़ के नीचे बैठते करनी, सारा प्लान चेंज कर दिया महाराज ने। मंगलवार का दिन था वो जब हम अगले दिन जाने वाले थे, पूरा प्लान सेट था हमारा। तो उसके बाद मैंने कभी भी आश्रम के अंदर कथा नहीं की, हर समय हम पेड़ के सहारे कथा करते। तो ये वास्तविक वृंदावन जो है ना, ये आप लोगों को हृदय में स्वीकार करके ले जाना है, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारे हृदय में जो आता है ना, वो हमारे इंद्रियों के माध्यम से आता है ना, जो कान से सुन रहे हैं, जो आंखों से देख रहे हैं, वो पांचों इंद्रियों से जो ग्रहण कर रहे हैं, वो हृदय में प्रवेश करता है, मन में प्रवेश करता है। उसको वहां पर बिठाना है, बसाना है, चिंतन करना है और प्रतिष्ठापित कर देना है, फिक्स करना है, वहां से उसको वापस बाहर नहीं जाना चाहिए। तो ये जो वातावरण है, देखो अभी भगवान ने आपके लिए पर्याप्त टेम्परेचर बना के रखा हुआ है, ना सर्दी ज्यादा है ना धूप ज्यादा है, प्रसन्न वातावरण है ना, शांति है, पक्षी बोल रहे हैं, वृक्षों का सहारा है, यशोदा देवी का गांव है, एकांत जगह है, परम शांति वाली, कहाँ मिलेगा आपको इस तरह? करोड़ों भी खर्च करें ना मुंबई में, नहीं मिलेगा आपको ऐसे। ऊपर से ऐसा ऑक्सीजन प्राणवायु है, ले लो, लेते रहो। क्या कहा था मैंने उधर बरसाने के बंद में, इनहेल मर्सी, एक्सहेल ऑल एंजाइटी। श्वास के साथ में कृपा ग्रहण करो, उच्छ्वास के साथ में सारी चिंताएं छोड़ दो और निश्चिंत हो जाओ। वो जो चल रहा है घर पे, शहर में, अपने कुटुंब में, वो तो चलने ही वाला है, उसमें कोई व्यवधान नहीं आने वाला है। उसको कहीं ना कहीं आपको विराम देना होगा, है ना? जब आप विराम देंगे तो होगा विराम, और आप उसको अपना के रखेंगे तो आपके साथ चलेगा वो। आप कहीं भी जाओ, अमेरिका जाओ, वृंदावन जाओ, उत्तरा जाओ, दिल्ली जाओ, कानपुर जाओ, तो आपके साथ चलेगा। तो ये सब आपके ऊपर है, और सब मन में होता है। मन ने ठान लिया कि नहीं छोड़ दूंगा मैं उसको, तो तुरंत छोड़ देंगे उसको। और ये कला कैसे हो सकती है मुमकिन, बताइए? यहाँ पर बैठना बोलना आसान है, छोड़ दो, ले लो, छोड़ दो, अरे भाई करना कैसे? करना केवल एक ही माध्यम से, भगवान के नाम का जप करके। बस भगवान का नाम का जप करते ना, तो ये हमारी सारी जो दिव्य इच्छाएं वो सब पूर्ण हो जाती है। भौतिक इच्छा पूर्ण होने का गारंटी नहीं, वो तो कर्मों के हिसाब से। लेकिन आपको अगर निश्चिंत होना है, परम शांत होना है, प्रेम से संपृक्त होना है, भगवान का सहारा चाहिए आपको, तो भगवान का नाम के माध्यम से आपको सब कुछ मिलेगा। जितनी भी चिंताएं हमारे ऊपर हमको त्रस्त कर रही हैं, आतंकित कर रही हैं, तो सब चिंताएं ना ऐसे भगवान के नाम का जप करने से दूर जाएगी। एक वाक्य बताता हूँ, उसके आगे मैं कथा सुनाता हूँ। गुरु जी ने हमको बताया था कि कृष्ण भावना, यानी कि जो भगवान के नाम जप करके हम प्राप्त करते हैं, कृष्ण भावना, कृष्ण भावनामृत, कृष्ण भावनामृत प्राप्त किया हुए व्यक्ति को जीवन में अति भयंकर भी कष्ट होंगे तो भी उसके बीच में भी आनंद का अनुभव होता है। बाय द वे ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस वन विल फील ब्लिसफुल इन द मिडल ऑफ ग्रेटेस्ट मिजरीज ऑफ लाइफ। जीवन के परम कष्ट के अंदर भी आप परम आनंद का अनुभव कर सकते हो, अगर आप कृष्ण भावना भावित हो तो। इसके लिए निरंतर भगवान के नाम का जप करना चाहिए। सुख हो या दुख हो, आंधी हो या तूफान हो, दिन हो या रात हो, जवानी हो या बुढ़ापा हो, गरीब हो या अमीर हो, सुंदर हो या कुरूप हो, पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, हर समय भगवान का नाम लो। हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव हि केवलम कलौ नस्यैव 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 गतिरन्यथा। तो भगवान की भक्ति में पांच प्रकार के रस हैं। जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और उनको दुनिया से थोड़ा छुटकारा हो जाता है, विरक्ति हो जाती है, तो फिर रस का अनुभव होता है। तो उसमें पहला रस है शांत रस। शांत रस में ब्रज की जो गायें हैं, मोर है, तोता है, पेड़ है, ऐसा शांत रस में होते हैं। फिर दास्य रस, जैसे हनुमान जी हमारे दास्यता में है। फिर साख्य रस, यानी सखा जो भगवान के है ना, उज्ज्वल, वसुदाम, श्रीदामा, सुदामा, सुबल, उज्ज्वल, ऐसे मधुमंगल, ऐसे सखा जो है, वो ये जानते नहीं है कि ये कौन है, ये तो फ्रेंड है। कुछ कंधे पे भी चढ़ते हैं, उसको टपली भी मारते हैं, उसको हराते हैं, उसको उसके कंधे पे चढ़ के राउंड लेते हैं, जीतने के बाद बहुत चढ़ते हैं, वो साख्य रस है। और उसके बाद आता है वात्सल्य रस। नंद बाबा, यशोदमयी, रोहिणी, प्रभावती, बड़ी बड़ी गोपियां, बड़े गोपों की पत्नियां, बुजुर्ग जो भगवान पर ना माता पिता की तरह प्रेम करते हैं वात्सल्य रूप में। और उसके आगे है श्रृंगार रस, माधुर्य रस, यानी गोपियां जो है वो उनका भाव अलग होता है। जैसे पति पत्नी का भाव कैसे होता है, वैसे ही श्रृंगार रस, तो उसमें वात्सल्य रस जो है उसकी सर्वश्रेष्ठतम पद जो है वो यशोदा का है। अनंत वात्सल्य के भक्त हैं भगवान के, है ना। जैसे कुंती देवी वात्सल्य में है, वो भी भगवान को वात्सल्य में देखती है। वसुदेव भी उनके पिताजी हैं, वो भी वात्सल्य में है। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन सर्वोत्तम जो है वो यशोदा देवी है। और इस वात्सल्य में भी दो प्रकार के वात्सल्य होते हैं। एक वात्सल्य वाले लोग जो होते हैं उनको पता नहीं है कि कृष्ण भगवान है, वो केवल उनको अपने बालक के रूप में देखते हैं, उनको पता नहीं है कि भगवान है। और एक प्रकार के लोग वात्सल्य में हैं जो उनको जानते हैं कि ये भगवान है। जैसे कुंती देवी को पता था कि जो मेरा भतीजा है वो भगवान है, भतीजे के प्रति भी प्रेम था, लेकिन ये अनुभूति के साथ था कि ये भी परम भगवान षड ऐश्वर्य पूर्ण 16 कलाओं से पूर्ण वैकुंठाधीश गोलोकेश्वर ये मेरा भतीजा है, है ना। जैसे मेरा भतीजा प्राइम मिनिस्टर है, वैसे जानकारी है कि ये प्राइम मिनिस्टर है। और ये जो लोग हैं ब्रज के, नंबर वन पे यशोदा, नंबर टू पे रोहिणी, नंबर तीन पे जो बड़ी बड़ी गोपियां हैं, उपनंद की पत्नी प्रभावती, फिर किसी की पत्नी तुंगी, फिर ऐसे बहुत सारे नाम है उनके, ये सब थर्ड लेवल पे हैं। चौथे लेवल पे नंद बाबा हैं, उसके बाद में देवकी हैं, उसके बाद में वसुदेव हैं, उसके बाद में कुंती है, उसके बाद में बाकी सारे लोग हैं। तो वसुदेव के बाद में लोग जो लोग हैं वो सब भगवान भगवान है इस बात को जानते हैं। और यहाँ का प्रेम जो है वो उससे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें कोई भावना नहीं है कि अरे भगवान है तो आदर करना चाहिए, ऐसा नहीं। और इनमें से भी नंद महाराज हो या बड़ी गोपियां हो या रोहिणी हो, इन्होंने किसी ने भी भगवान को डांटा नहीं कभी। खाली वो भगवान सुनते नहीं है, मानते नहीं, तो परेशान हो जाते, लेकिन डांटने का हिम्मत किसका नहीं था। डांटने का हिम्मत केवल एक व्यक्ति में, वो यशोदा देवी। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, बाल रूप में भगवान ना गुल्ली डंडा ऐसे कुछ छोटे छोटे गेम खेल रहे हैं, इतने गुम होते थे खेल में, इतने मशगूल मग्न होते थे कि पता है ना, आपके बच्चों को भी पता है ना, ना प्यास लगती है, ना भूख लगती है, ना नींद आती है जब खेलने लगते हैं। दिन से लेकर रात तक खेल सकते हैं, भोजन की भी याद नहीं आएगी बीच में। जब घर पे आएंगे तो बोलेंगे पांव दुख रहा है मम्मी पैर दबा दो, फिर भूख भी लग रही है, फिर नींद भी आ रही है, साथ में सब कुछ एक साथ में हो रहा है। लेकिन दिन में आप बोलेंगे तो इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे, इतना खेलेंगे कि सब कुछ होश खत्म है। तो ऐसे हमारे गुरुजी बताते हैं कि जितने भी खेल हम लोग खेलते हैं ना, हम लोग खेले, आप खेले, सब लोग घरकुल घरकुल खेले, जितने भी गेम खेले, बॉल खेले, गुल्ली डंडा खेला है, क्या बताओ, लुका छुपी खेले हैं, हर प्रकार का खेल जो है वो कृष्ण ने खेला है, इसलिए वो आपको पता है, इसलिए आप खेलते हो। ये भी एक बड़े रहस्य की बात है। हम लोग ऐसा कोई गेम नहीं जो अभी आजकल का, तो कंप्यूटर गेम भगवान ने नहीं खेला था, ये ध्यान रखना, वो माया का एक बड़ा जाल है पूरा। मैं वो सादगी की बात कर रहा हूं, सब कुछ खेल भगवान के द्वारा ही शुरू होते हैं। तो ऐसे खेल में वो बाल लीला में इतने मग्न रहते हैं, इतने मग्न रहते हैं। तो बाल लीला के समय पे ना दोपहर को ऐसा नियम था कि बाबा आएंगे, नंद बाबा, और वो कृष्ण बलराम के साथ भोजन करेंगे। तो अभी दोपहर भी हो गई, बाबा भी आ गए, तो ये लोग खेल में मग्न है। तो रोहिणी जी आती है, जाओ बुला लो उनको, रोहिणी आती है, बेटा बलराम, बेटा कृष्णा, चलो बाबा आए हैं, भोजन करने का समय हो गया है, कितनी देर हो गई है, अभी सब खेल रहे हो, चलो अभी खेल बंद भी करो, माता जी जप नहीं करना, कथा सुनने के समय कथा सुनना, एक काम एक समय, चलो अभी समय हो गया है। अरे ऐसा प्रेम से बोलेंगे तो सुनने वाले क्या, वो अपना डायलॉग तो बोले जा रही है, वो कहाँ सुन रहे हो, वो सुनने ही नहीं रहे हो, मतलब वो आई है इसका भी कुछ एक्नोलेजमेंट नहीं है कि तुम आ गई हो, पुकार रही हो, वो खेलने में ऐसे मग्न है। कई बार प्रेम से डायलॉग ऐसे होते रहे, वो तो समझा ही नहीं उनको, तो वापस गई वो, बोले दीदी यशोदा वो तो नहीं